Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Vishwatmanandji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
तो ये चैतन्य की प्रतीति जो है ये क्रिया के माध्यम से होती है और क्रिया का जो मूल शक्ति है उसी को प्राण बोलते हैं। ये सांस को प्राण नहीं बोलते हैं, ये सांस जो आती है ये तो हमारी धोखनी लंग्स चलते हैं, इसलिए ये बाहर की हवा भीतर गई और भीतर की हवा बाहर आई, इसको प्राण नहीं बोलते हैं। जिस शक्ति के कारण वो आपके फेफड़े चलते हैं, जिस शक्ति के कारण आपके गुर्दे काम करते हैं, जिस शक्ति के कारण आपका सिर मस्तिष्क काम करता है, हृदय काम करता है, पूरा शरीर जिस शक्ति के कारण काम करता है, उस शक्ति को प्राण बोलते हैं। और ये जो सांस है, ये सांस तो उसका प्रतीक है, इसको प्रथम प्राण केनोपनिषद ने बताया है। तो शिष्य का महा प्रश्न यही है, केनेशितम पतति प्रेषितम मन प्रथम प्रैति युक्त, प्रथम प्राण जो है इसको कौन नियुक्त कर रहा है। प्रथम प्राण माने ये जो सांस से जो प्राण मालूम पड़ता है, माने जो मूल क्रिया शक्ति है वो किसके द्वारा ये प्रयुक्त हो रही है, लगाई जा रही है। अर्थात प्राण स्वतंत्र नहीं है, अभिप्राय ये हुआ, प्राण तो चलना प्रारंभ हुआ और एक दिन प्राण चलना बंद हो जाएगा। स्वतंत्र होता तो चलता ही रहता और चलने से पहले भी चलता ही रहता। चूंकि काल में ये चलना प्रारंभ होता है इसलिए काल में इसका चलना बंद हो जाता है। अच्छा, हार्ट अटैक होता है जब, तो प्राण का क्या होता है? क्या तुरंत प्राण बंद हो जाते हैं? एक अटैक आया, दो अटैक आया, फिर एक ऐसा अटैक आएगा, किसी को तीन भी होते हैं, नहीं ज्यादातर तो दो में ही खेल जाते हैं, तो मस्तिष्क फेल हो जाएगा, गुर्दे फेल हो जाएंगे, फेफड़े फेल हो जाएंगे, माने प्राण का जहां जहां विशेष प्राकट्य है वो सब फेल हो जाएंगे। तो केनोपनिषद की श्रुति है, यत् प्राणेन न प्राणेति ये न प्राण प्रणीयते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। प्राण जिसका प्राण नहीं कर सकते, जिसके द्वारा प्राण प्राण होते हैं माने चलते हैं, उसको ही तुम ब्रह्म जानो। प्राण के रूप में जिस ब्रह्म की उपासना की जाती है वो ब्रह्म नहीं है, वो तो ऐसा ही है जैसे कि तुम इसको भगवान मान लो तो प्राण को भगवान मान लो, प्राण ब्रह्म इत्युपासित, ये भी श्रुति में आता है, प्राण को ब्रह्म मान लो, इसकी उपासना करो। याज्ञवल्क और जनक के संवाद में ये आता है। जनक से पूछा याज्ञवल्क ने कि तुम्हारे पास महात्मा आते हैं तो बताओ उन्होंने क्या उपदेश दिया। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बताया कि प्राण ब्रह्म है, ऐसी उपासना करनी चाहिए। तो बोले उन्होंने क्या ये भी बताया कि प्राण की प्रतिष्ठा क्या है, ये प्राण किस में प्रतिष्ठित है, प्राण अपने में स्वतंत्र है या किसी के आश्रित है? बोले ये तो उन्होंने नहीं बताया। बोले उन्होंने नहीं बताया तो अब हम बताते हैं, हम तुम्हारे गुरु जी हुए। तो फिर ब्रह्म का निरूपण किया उन्होंने, आत्मा का निरूपण किया। तो कहते हैं यत् प्राणेन न प्राणेति ये न प्राण प्रणीयते, प्राण जिसके द्वारा प्राणन करता है उसको तुम ब्रह्म जानो, उसको तुम आत्मा जानो। प्राण के सहारे मनुष्य जिंदा नहीं रहता है, उस आत्मा के सहारे ही जिंदा रहता है। एक यहां दृष्टांत महाराज श्री ने दिया है, वो समझने में बहुत अच्छा है। वो कहते हैं अगर आप जीव को समझना चाहते हो तो पहले बीज को समझ लो। तो ज ई व जीव, अब इसको उलट दो, वा ई ज वीज हुआ, और वा और बा का अभेद व्याकरण में होता है, इसलिए वो वीज ही जो है बीज हो गया। तो चैतन्य की दृष्टि से जिसको जीव बोलते हैं, जड़ की दृष्टि से उसी को बीज बोलते हैं। तो ये जो शरीर का बीज है, माने शरीर में जीव है, माने शरीर का जो बीज है, इसकी क्रिया का जो मूल हेतु है, उसी को जीव बोलते हैं, बीज है वो। तो बीज को आप धरती में बोओ तो क्या होगा, तो उसमें से एक अंकुर निकलेगा ऊपर को और एक जड़ निकलेगी नीचे को। भाई एक ही बीज में ऊपर को भी निकला और नीचे को भी निकला, ऐसा क्या है? और आम के बीज से आम ही पैदा होगा और अमरूद के बीज से अमरूद ही पैदा होगा, ऐसा तो नहीं है कि आम के बीज से अमरूद पैदा हो जाए। इसका मतलब यह कि एक सत्ता है जो संस्कारवती है, बिना संस्कार के कोई बीज नहीं होता है। तो ये संस्कारवती जो सत्ता है चैतन्य की, इसको ही जीव बोलते हैं। ये जो हमारा व्यक्तित्व बना हुआ है ना, जिसका जो भी व्यक्तित्व है, माने पर्सन, तो वो संस्कारों के कारण वो पर्सन मालूम पड़ रहा है, वो व्यक्ति मालूम पड़ रहा है। किसी का शरीर स्त्री का बन गया, किसी का पुरुष बन गया, कोई सन्यासी हो गया, कोई ब्राह्मण हो गया, कोई मार्क्सवादी हो गया नारायण, कोई घोर नास्तिक हो गया, पंचभूतों को भी न माने, कुछ है ही नहीं। तो ये सब क्या है? सब संस्कारों की माया है। जिसके मन में जैसे संस्कार बिठा दिए जाते हैं नारायण, और फिर उन्हीं संस्कारों में उसकी सत्यत्व बुद्धि हो जाती है, माने पूर्ण विचार न करने के कारण, तो बस उसी को ठीक मानने लगता है, वैसा ही हो जाता है। अब उसका अगला जन्म कैसा होगा नारायण? वो जैसा उसका ज्ञान है वैसा ही होगा। तो जैसे बीज में से एक अंकुर ऊपर को निकलता है और जड़ नीचे को निकलती है, ऐसे ये जो जीव है ना, ये हृदय देश में बैठा हुआ प्राण के रूप में अंकुर ऊपर की ओर निकलता है और अपान के रूप में अंकुर नीचे, वो जड़ जो है वो नीचे की ओर निकलती है। अच्छा, जो अंकुर ऊपर निकला वो अंकुर बड़ा होगा तो पेड़ बनेगा, पेड़ बन करके फिर उसमें फल आएगा, तो फल में फिर बीज लगेगा। तो वो बीज तो नष्ट हो गया, लेकिन दूसरे बीज के रूप में वो जिंदा हो गया। ये बात हो गई ना साफ? जो धरती में बीज डाला था वो तो कालांतर में मर गया और जड़ उसकी रह गई, और अंकुर जो था वो दूसरे बीज का कारण बन गया। अच्छा, अब मान लो आपके पास बीज है और धरती में नहीं डाला और जलाया भी नहीं उसको, तो जैसे ये मटर वटर रख लेते हैं ना घर में, आलू उगे आती हैं अपने आप ही उगे आती हैं, तो अपने आप का मतलब है वातावरण के नमी से और उससे उगे आती हैं, तो उनमें अंकुर निकल जाता है। तो लेकिन बीज में जब तक जीवनी शक्ति है तब तक उसमें से अंकुर निकलते रहेंगे। तो कोई ये कहे कि हम जो है मानते नहीं है पुनर्जन्म, इसलिए हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जब तक वासना रूपी संस्कार है, बीज है, तब तक पुनर्जन्म जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। केवल अविद्या निवृत्ति से पुनर्जन्म नहीं कटता है। अविद्या, कामना और कर्म, इन तीनों का एक कैप्सूल जो है, जिसको कारण शरीर बोलते हैं नारायण। लोग तो कहते हैं अविद्या ही कारण शरीर है और वासना जो है ये सूक्ष्म शरीर है और कर्म जो है ये स्थूल शरीर है, लेकिन ये तीनों साथ ही साथ रहते हैं। जब नष्ट होंगे तो तीनों साथ नष्ट होंगे, नहीं तो तीनों ही रहे आएंगे। बोले अविद्या तो हमारी निवृत्त तो हो गई, अब वासना रह गई है तो इसको जो पड़ी रहने दो, क्या फर्क पड़ता है, विदेह मोक्ष तो हमारा हो ही जाएगा। अब वेदांत का सिद्धांत यह है कि जिसकी जीवन मुक्ति होती है उसी की विदेह मुक्ति होती है। ऐसा नहीं है कि आपकी जीवन मुक्ति तो हो नहीं और मरने के बाद आप मुक्त हो जाए। तो जीवन मुक्ति कब होगी, जब अविद्या भी निवृत्त हो और कामना भी निवृत्त हो और कर्म से भी छुट्टी मिले, कर्म भी निवृत्त हो। तो बोले कर्म तो प्रारब्ध करा लेगा, तो बोले प्रारब्ध से जो होता है उसे होने दो, उसमें अपना हाथ न उसे बढ़ाने में लगाओ न उसे घटाने में लगाओ। मान लो रोग आ गया, अब सारे रोग तो प्रारब्ध से नहीं आते हैं, लेकिन मान लो कोई रोग आ गया और प्रारब्ध वाला रोग आ गया, अब आप दुखी होने लगे, चलो वहां तक भी ठीक था, उसका प्रारब्ध का फल तो यही है सुख और दुख। लेकिन अब आपने क्या किया कि अब मैं आ तो गया है, अब इसको आगे नहीं बढ़ने दूंगा, डॉक्टर साहब ऐसी दवाई दो कि ये चार दिन के बजाय एक ही दिन में ठीक हो जाए। वो ठीक तो अपने आप ही होगा, जो प्रारब्ध का रोग होता है वो अपने आप ठीक होता है, दवाई से ठीक नहीं होता है। लेकिन वो सिर्फ डॉक्टर लोग जो हैं उसको सहने की शक्ति दे देते हैं, जो प्रारब्ध के वेग होते हैं। अब आपने क्या किया, उसको रोकने की कोशिश की ना, तो वो नया प्रारब्ध बन जाएगा। तो ये अविद्या, कामना और कर्म, ये तीनों ही जब एक साथ निवृत्त होते हैं तब जीवन मुक्ति कर्म का बाद होता है और वासना का बाद होता है और अविद्या पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। तो कहते हैं कि मनुष्य जो है केवल प्राणापान व्यान समान उदान आदि जो वायु हैं, केवल इनके द्वारा जिंदा नहीं रहता है बल्कि चैतन्य के द्वारा जिंदा रहता है, जिसके ये आश्रित रहते हैं, जिसके कारण ये प्राण चल रहे हैं। और एक बात और लिखी भाष्यकार ने कि आपके शरीर में कितनी चीजों से शरीर बना है, देखो 25 तत्वों से तो आपका स्थूल शरीर है, पांच भूत है ना, तो वो आपस में मिलते हैं तो 25 तो यही हो गए। अच्छा, और लिंग शरीर जो है सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर मिलाकर के 27, इसके अवयव ये हैं, पांच कर्मेंद्रिय, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, अविद्या कामना कर्म और सूक्ष्म भूत, ये सब मिलाकर 27 हो गए। तो 27 और 25 52, ये 52 तत्वों से एक मोटर गाड़ी के कलपुर्जे जोड़ करके ये शरीर बना है। तो कहते हैं ये हुआ संघात, संघात माने कलेक्शन, 52 चीजों का कलेक्शन है ये, हर एक के शरीर में 52 ही है। अब किसी में कमती बढ़ती क्वांटिटी का फर्क है, संख्या का फर्क नहीं है। तो ये 52 चीजों से बना हुआ शरीर जो है ये अपने लिए नहीं होता है, जैसे मोटर कार जोड़ करके बनाते हैं तो किसी इस पर चढ़ने वाले के लिए, रथी के लिए रथ होता है। इसी प्रकार से ये जो जीवात्मा है, जो भोक्ता है, उसके लिए ये 52 चीजों का ये शरीर बना है। तो प्राण तो उसका अंग हुआ ना, तो केवल प्राण से ही जिंदा रहता है, ऐसा कैसा कहना बनता है। जिसके लिए ये प्राण चल रहे हैं वो जब तक इसके अंदर रहेगा और प्राणों को अपना उपयोगी मानेगा तब तक ये प्राण चलते रहेंगे, और जब उपयोगिता उनकी समाप्त हो जाएगी, भोग देना बंद कर देंगे, तो भोक्ता कहेगा अब तुम्हारी जरूरत नहीं, अब हमें चलने दो यहां से। इसी को मृत्यु बोलते हैं। तो न प्राणे न अपाने न मर्त्यो जीवति कश्चन इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन् नेतावुपाश्रितौ। तो आत्मा जो है ये तो 52 चीजों से नहीं बना हुआ, ये तो सिंगल एंटिटी है। सच्चित आनंद तीन नहीं है, ये एक ही चीज है। तो एक सत्ता जो ज्ञान सत्ता भी है और आनंद सत्ता भी है नारायण, ऐसी एक सत्ता जो है ये तो है असमहत, माने ये संगठित नहीं है, जोड़ कल्पुर्जे से जोड़ करके ये नहीं बनी है आत्मा। और बाकी ये शरीर जो है ये जोड़ जोड़ करके बनाए गए हैं अवयवों से, इसलिए ये आत्मा के लिए है, आत्मा इस शरीर के लिए नहीं है। अच्छा, अब हम लोगों की गलती क्या है? हम लोगों की गलती ये है कि हम शरीर के लिए हैं ऐसा मानते हैं। सारा ध्यान हमारा इसी के ऊपर है कि शरीर सुखी रहे, स्वस्थ रहे, भोग देता रहे। वो कोई आदमी था तो उसने भगवान से कहा कि भगवान आप प्रसन्न हो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन शरीर तो मरेगा ही, तो आप ऐसी कृपा करना कि जब हमारे मरने का टाइम आवे तो उससे पहले जरा सूचित कर देना कि तुम्हारा टाइम आ गया है, तो फिर हम तैयार हो जाएंगे। भगवान ने कहा अच्छी बात। अब टाइम सूचना तो किसी को मिलती नहीं है, बाकायदा सूचना तो किसी को मिलती नहीं। अब वो मृत्यु आ गई एक दिन, तो उसने भगवान को लताड़ा, बोले आपने तो कहा था कि हम सूचना देंगे, ये तो एक साथ आ गई। अरे बोले कितनी बार सूचना देता, तेरे दांत उखड़े तब सूचना दी, तेरी आंख खराब हो गई तब सूचना दी, कान से सुनना बंद हो गया तब सूचना दी, शरीर में झुर्री पड़ गई तब सूचना दी, शरीर ठीक नहीं रहता तब सूचना दी। अब तू किसी सूचना को सूचना ही नहीं मानता है नारायण, तो इसके क्या है? तो ये तो सब सूचनाएं मिल रही हैं। अब हम शरीर के लिए नहीं है, शरीर हमारे लिए है। जिस दिन इसकी उपयोगिता शरीर की हमारे लिए समाप्त हो जाएगी, अपने आप ही समाप्त हो जाएगा, इसको ज्यादा इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सामान्यतया स्वस्थ रहे बस इतना ही है, सामान्यतया। विशेषतया स्वस्थ रहने के लिए दवाई खाने की जरूरत नहीं है। बोले बुढ़ापे में विटामिन्स के बिना काम नहीं चलता है, फिर कहेंगे वो हार्मोन्स की कमी हो गई आप में, वो कहेंगे कि नहीं मिनरल्स की कमी हो गई। अरे बाबा वो तो सब में कमी होगी होगी, जब शरीर थकेगा तो सब बातों में कमी होगी। आखिर ये आई कहां से? आई भी तो शरीर में प्रारब्ध से ही है, तो प्रारब्ध क्षय होगा तो अपने आप कम भी होंगी। अब तुम बाहर से दवाई दे देकर उसे कब तक साधोगे? ना हंत तो इदम प्रवक्ष्यामि गुह्यम ब्रह्म सनातनम यथा च मरणम प्राप्य आत्मा भवति गौतम। अब कहते हैं यमराज, ये शायद इस पर्चे में नहीं होगा, नहीं है, ये छठा मंत्र है, इसमें इंट्रोडक्शन है सिर्फ, इसलिए मैंने नहीं लिखा उसमें। हंतता इदम प्रवक्ष्यामि, अब कहते हैं यमराज नचकेता, समझ में आई? कि हाँ महाराज आई तो सही। बोले ये तो क्यों लगा दिया, आई तो सही। अच्छा तो फिर समझ। हंत माने अब मैं फिर दोबारा तुझे समझाता हूं, तो दोबारा समझाने की तभी जरूरत होती है जब समझ में थोड़ी कुछ कमी होती है। बोले हाँ बात तो ठीक है। अरे बात ठीक है कि बात तो ठीक है? तो लगाने की तो जरूरत यही है कि पूरी पूरी समझ में नहीं आई। तो हंतता इदम प्रवक्ष्यामि, अब मैं पुनः तेरे से ये बात कहता हूं, बताता हूं। क्या? गुह्यम ब्रह्म सनातनम, वो जो गोपनीय सनातन ब्रह्म है उसको मैं फिर दोबारा बताता हूं। तो गोपनीय का क्या मतलब है? ये ब्रह्म में कुछ भी गोपनीय नहीं है नारायण, खुल्लम खुल्ला है ब्रह्म तो खुल्लम खुल्ला है, और जो इसको गोपनीय बनाते हैं वो रहस्यवादी लोग हैं, उनका जो भी उद्देश्य हो वो जानते हैं भगवान। लेकिन वेदांत ये मिस्टिसिज्म को स्वीकार नहीं करता है, रहस्यवाद को स्वीकार नहीं करता है। बोले तुम यों बैठो तो तुमको यों दिखाई पड़ेगा, फिर तुम्हें यों सुनाई पड़ेगा, फिर तुम उस लोक में पहुंच जाओगे। एक सज्जन बोले कि हम तो रोजाना ब्रह्मलोक में होकर के आते हैं। मैंने कहा अच्छा, कि कैसे होके आते हो? कि हमारा सूक्ष्म शरीर निकल जाता, यहीं के एक महात्मा के शिष्य हैं थे, अब तो उनका भी शरीर नहीं था। तो बोले वो उनकी ऐसी ध्यान की प्रक्रिया है कि हमारा सूक्ष्म शरीर रोजाना शरीर में से निकल जाता है और लोक लोकांतरों में विचरण करके फिर लौट आता है। मैंने कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन लौट के ही ना आवे, निकल जाता है वो तो ठीक है, सूक्ष्म शरीर किसका निकल के जाएगा, जो मरेगा उसका निकल के जाएगा ना रहे। तो ये तो एक भाव होता, इसी को रहस्यवाद बोलते हैं। तो खुल्लम खुल्ला बात लोगों को अच्छी नहीं लगती है। जैसे कपड़े से शरीर को ढक के रखो तो उसमें कुतूहल भी होता है और अच्छा भी लगता है, और नंग धड़ंगे खड़े हो जाओ नारायण तो वो अच्छी नहीं लगती। तो इसी प्रकार से भले ही अच्छा ना लगे लेकिन ब्रह्म तो नंगा है, महाराज जी बोलते हैं कि ब्रह्म तो नंगा है, इस पर कोई आवरण नहीं है, खुल्लम खुल्ला है। अरे जो कुछ देख रहे हो आप ब्रह्म ही है, जो कुछ सुन रहे हो वो ब्रह्म ही है, जो कुछ स्पर्श कर रहे हो वो ब्रह्म ही है, किसी भी रूप में जो कुछ भी आपको अनुभव हो रहा है वो सब ब्रह्म ही है, और अनुभव करने वाला स्वयं ब्रह्म है, इसलिए उसके अनुभव में जो आता है वो ब्रह्म से भिन्न नहीं होता। जो लोग ब्रह्म से अपने को अलग मानते हैं उनके यहां रहस्यवाद होता है, इतना हिस्सा मिल गया उतना हिस्सा नहीं मिला। तो गुह्यम ब्रह्म सनातनम, ये गुह्यम है माने गोपनीय है। तो महाराज श्री ने कहा कि इसको गोपनीय फिर क्यों कहा जब इसमें कुछ खुल्लम खुल्ला ही है सब। तो बोले गोपनीय इसलिए है कि जैसे बच्चे खेलते हैं तो बोले अच्छा हम छिप जाते हैं तुम हमको ढूंढो, अब कहीं कोने में छिप गए, अब वो ढूंढता ढूंढता आया उसकी निगाह नहीं पड़ी तो वो आगे निकल गया, तो जो छिपा हुआ था व्यक्ति वो वहां उस कोने में से निकल करके वहीं आकर खड़ा हो गया जहां से यात्रा चालू हुई थी। अब वो तो बाहर बाहर ढूंढ रहा है कि कहीं छिपा हुआ होगा, जब लौट के आया जब नहीं मिला, अरे तो तुम तो यहीं खड़े हो भाई। तो ये ब्रह्म भी ऐसा ही है, ब्रह्म जो है छिपा हुआ है नहीं, लेकिन जहां से चलते हो वहां नहीं ढूंढते हो। कहां से चलते हैं कि आत्मा से चलते हैं, स्वयं से चलते हैं, तो उसी के अंदर ब्रह्मत्व है, वही ब्रह्म है स्वयं, इसलिए गुह्य बताते हैं इसको। और सनातन है, सनातन माने हमेशा से एक जैसा रहने वाला है, सदा माने सदैव, जिसका तन शरीर एक जैसा रहता है उसको बोलते हैं सनातन। तो ऐसे ब्रह्म का मैं तुझे फिर दोबारा वर्णन करता हूं। कहते हैं महाराज श्री के ये आंख की पुतली है, ये सबको देखती है, लेकिन पुतली क्या अपने को भी देखती है? तो क्या देख सकती है? बोले हां देख सकती है, यदि शीशा उसके सामने रख दो तो तो अपने को तो नहीं देखेगी लेकिन अपने प्रतिबिंब को देख लेगी। प्रतिबिंब जो है वो वैसा ही है जैसा बिंब है। तो ये शीशा क्या है नारायण? यही शास्त्र का शीशा है। शास्त्र का शीशा है बुद्धि में, इसी को जीव के रूप में अनुभव में आता है, यानी मैं के रूप में जो है ये प्रतिबिंब है। ब्रह्म का बुद्धि में प्रतिबिंब जो है ये अहम रूप से स्फुरित होता है। ये अहम तो शुद्ध है लेकिन इसके साथ जब ये बुद्धि का लवाजमा और मिल जाता है, बुद्धि मन के साथ जुड़ी हुई है, मन इंद्रियों के साथ जुड़े हुए हैं, इंद्रियां विषयों के साथ जुड़े हुए हैं, तो अब जब ये सब इंद्रियां विषय मन और ये सब बुद्धि के साथ जब मिल जाते हैं तो बस वो शुद्ध रहते हुए भी अशुद्ध सा मालूम पड़ने लगता है, उसी को जीव बोलते हैं। यथा च मरणम प्राप्य आत्मा भवति गौतम। अगर तुमने इसको जान लिया, आत्मा को ब्रह्म जान लिया, तब तो कोई बात ही नहीं है, आगे तुम्हारी गति बंद। जैसे आप बीज को जला दो तो उसमें से अंकुर नहीं निकलेगा, फिर तो आगे का सब अंकुर बंद। तो नारायण बीज तो आप भौतिक अग्नि में जलाओगे लेकिन ये बीज का उल्टा जीव है ना, तो इस जीव को कैसे जलाओगे? तो ये है ज्ञान अग्नि से जलाना पड़ता है। और ज्ञान अग्नि कोई वास्तव में अग्नि नहीं है, वो सिर्फ जीव में जो अविद्या है उसको जलाती है। अविद्या कोई क्यों जलाती है भाई? क्योंकि वो भी तो अविद्या माने जो विद्या ना हो, जो ज्ञान ना हो। तो जो ज्ञान होगा वो अज्ञान को जलाएगा, क्योंकि ज्ञान और अज्ञान एक दूसरे के विपरीत हैं। लेकिन तभी जलाएगा जब एक ही अधिकरण में होंगे। जिस बुद्धि में अज्ञान है उसी बुद्धि में जब ज्ञान उत्पन्न होता है तब वो ज्ञान की अग्नि बनती है। आत्मा तो सबको सहन करता है, वो तो सर्वाधिष्ठान है, वो तो अविद्या को भी सहन करता है, अज्ञान को भी सहन करता है। लेकिन जिस बुद्धि में अज्ञान रहता है उसी बुद्धि में यदि ज्ञान आ जाए तो वो फिर अज्ञान को नहीं रहने देगा, वो जला देगा। आपस में समसत्ता जिनकी, लक्ष साधक बाधकता तिनकी। विचार सागर की पंक्ति है। तो यदि तुमने इस ज्ञान को प्राप्त कर लिया तब तो फिर तुम्हें कहीं आना जाना है नहीं, तुम यहीं ब्रह्म हो। और अगर नहीं जाना, यथाच मरणम प्राप्य, तो तुम्हारे जन्म शरीर की मृत्यु तो होगी। तो जिस प्रकार से फिर ये आत्मा जिस रूप में रहता है वो भी मैं तुमको बताता हूं। अब कल कोई बता देंगे और क्या, क्या इसमें दो बातें हुई नहीं? एक तो ब्रह्म बताऊंगा और एक जिसको ज्ञान नहीं हुआ है वो यदि मरेगा तो उसकी क्या गति होगी, ये दो बातें बतानी है इसमें। तो पहले छोटी बात का उत्तर देते हैं। मधुसूदन सरस्वती जी ने लिखा है वहां गीता भाष्य में कि एक लोहार को कहा जाए कि तुम एक कढ़ाई बना दो और एक सुई बना दो, तो पहले वो कढ़ा बनाएगा कि सुई बनाएगा? दो प्रोजेक्ट हो यदि, एक छोटा हो और एक बड़ा हो, तो कहते हैं भाई पहले छोटा पूरा कर लो, बड़े में तो बहुत टाइम लगेगा। तो ये तो मुख्य विषय है ही कि ब्रह्म सनातन क्या है, ये तो बार बार कई तरीके से समझाना ही है। तो छोटी बात पहले बता देते हैं कि मरने के बाद अज्ञानी के कैसी गति होती है। तो ये सातवां मंत्र जो है इसी को बताता है कि यथा कर्म यथा श्रुतम, और आठवें में फिर ब्रह्म का वर्णन होगा। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 हरि ओम।